सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे आंसर राइटिंग पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले जो एक दो दूसरी खबरें हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। दरअसल ये जो दोनों खबरें हैं ये अखबारों से ही जुड़ी हुई खबरें हैं। एक बात जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं और इसका संदर्भ है आज के दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट, ये कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है, जैसे आप कह लीजिए कि हमारी जो विकास दर है, और इस विकास दर से ही प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है, उसका राजनीति से कैसे कोई संबंध दिखाई नहीं देता। तो इस पर इन्होंने बहुत अच्छा एक तर्कपूर्ण एडिटोरियल कमेंट लिखा है। अब मुझे ये तो नहीं पता लग पा रहा है कि ये आईएएस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि सारी तैयारियां हमारी केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। हमें अपने दिमाग को भी कुछ ऐसे इनपुट देने होते हैं जिससे कि वह मजबूत बन सके, सोचने के लिए बाध्य हो सके, और कुछ ऐसे तथ्य इसमें डालने भी चाहिए। पहली बात कि जो जीडीपी का टॉपिक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होनी चाहिए। जीडीपी कैसे हम प्रति व्यक्ति आय का मापन करते हैं, उनके क्या क्या फार्मूले हैं, ये सब बहुत अच्छे ही है। वो ये है कि सामान्य तौर पर देखिए, जब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब चुनाव में खड़े होती हैं और जनता से वोट मांगने जाते हैं, तो दो पार्टियां होंगी सामान्य रूप में। एक तो वो है जो ऑलरेडी सत्ता में है, तो उसे मैंने एक पार्टी कहा है। दूसरी वे पार्टियां होंगी, राजनीतिक दल होंगे, जो सत्ता में नहीं है लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो सत्ता में जो पार्टी होगी, डेफिनेटली अगर उसके दौर में जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही है, देखिए राज्यों की भी जीडीपी ग्रोथ होती है, एक तो हमारे नेशनल ग्रोथ होती है, फिर राज्यों के भी अपने अपने होते हैं, तो अगर उसकी जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही है तो डेफिनेटली वो जनता के सामने रखेगी कि देखिए पिछले 5 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी रही, देश का इतना था जबकि हम उससे भी ज्यादा अच्छे में रहे। जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये है कि जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर है, बैरोमीटर है आप कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जनता पर इसका सकारात्मक असर होना चाहिए और उन्हें वोट मिलने चाहिए। और अगर जीडीपी ग्रोथ पुअर है, माइनस में है, तो सीधी सी बात है कि वो इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, सत्ताधारी पार्टी तो चर्चा नहीं करेगी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो इसकी चर्चा करेंगे कि देखिए पिछले 5 साल में क्या है आपका विकास दर, बताइए, देखिए माइनस में विकास दर गया है, हमारे देश के विकास दर 7% है, फलाने राज्य का 10% है, फलाने राज्य का 12% है, जबकि हमारे राज्य का माइनस में चल रहा है, यानी कि हमारा राज्य गरीब हुआ है, और ये क्यों गरीब हुआ है, इस सरकार की वजह से, तो आप हमको वोट दीजिए। सीधी सी बात है कि इस तरह से प्रचार प्रसार होगा। लेकिन इस एडिटोरियल कमेंट में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से यह देखने में आया है कि जो जीडीपी ग्रोथ रहे और अभी जो कुछ चुनाव हुए हैं राज्यों में, उनमें कहीं कोई सामंजस्य ही दिखाई नहीं दे रहा है, और ये बात उन्होंने बकायदे उदाहरण के साथ बताई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी ग्रोथ था वो बहुत खराब रहा उत्तर प्रदेश का, और जो चुनाव हुए अभी पिछले जो चुनाव हुए विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें आप देखते हैं कि कैसे जो सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी थी फिर से चुन करके आई, फिर से सत्ता में आई, केवल सत्ता में ही नहीं आई बल्कि पहले से भी ज्यादा बहुमत से सत्ता में आई। तो अब आप देखिए कि जीडीपी ग्रोथ उल्टी है लेकिन राजनीतिक सफलता आपकी बहुत अच्छी है। इसके बाद एक उदाहरण उन्होंने पंजाब का दिया है कि पंजाब की जो ग्रोथ थी वो मीडियम थी, न माइनस है न बहुत हाई है, ठीक ठाक ग्रोथ रही है। वहां भी चुनाव हुए लेकिन पता लगा कि वहां जो पिछली पार्टी जो सत्ता में थी वो बुरी तरह से हार गई, नई पार्टी सत्ता में आ गई, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो गई, आप पार्टी अब वहां राज्य कर रही है, वहां ये नहीं चला। लेकिन एक बात हमें और भी दिखाई देती है जो वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल में जो ग्रोथ रही है खासकर कोरोना के दौर में वो पॉजिटिव ग्रोथ रही है, जबकि बहुत कम राज्य ऐसा कर सके हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रही, यानी कि अच्छी रही स्थिति। और वहां ममता बनर्जी की जो पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस फिर से जीत करके आ गई। तो अब आप देखिए कि तीन अलग अलग रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके आधार पर जो एडिटोरियल कमेंट में निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसा लगता है कि जो हमारी जो जनता है उसको जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, जो भारतीय मतदाता हैं वो कुछ और ही मुद्दों पर मतदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय मतदाता का जो एक चरित्र है इससे एक रिफ्लेक्ट होता है, और इस रूप में ये एडिटोरियल कमेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और 80 के करीब पहुंच गया है। अब थोड़ी सी भारतीय सरकार चिंतित हुई है कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो रही है। देखिए, जब हम कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो मान करके चले कि इसका जो जनजीवन सामान्य लोग हैं उन पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, आयात निर्यात पर जरूर प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खासकर राष्ट्र का जो जीवन है, आर्थिक जो जीवन लोगों का, वो प्रभावित नहीं होता है। लेकिन दूसरे तरीके से इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है, और आगे चल करके ये पड़ सकता है। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। एक दो बातें खासकर जो मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर इसी तरह से रुपया लगातार गिरता रहा, तो एक जो चिंता है हमारे अर्थशास्त्रियों को, वो ये है कि भारत में जो निवेश है, जो बाहर से जो निवेश हुआ है, उसका पलायन न होने लगे, वो निवेश बाहर न जाने लगे। और ऐसा होगा, इस पर आप विचार कीजिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपको पता लग जाएगा। बस आपको थोड़ा गणित लगाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर चलिए मैं यहां आपके लिए इसे सरल बना देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति ने भारत में $100 निवेश किया, $100। तो जब उसने $100 निवेश किया था, तो उस समय मान लीजिए कि रुपया 70, $1 के बराबर 70 था, तो उसे 100 में 70 का गुणा कर दीजिए, तो 7,000 रुपये उसे मिले। ठीक है, 7,000 रुपये उसे मिले, $100 उसने दिए। अब वो अपने $100 वापस लेना चाहता है। अब आप बताइए कि उसे कितने भारतीय रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने डॉलर तो भारत को दे दिए हैं, और भारत से रुपया ले लिया है, और रुपया भारत के मार्केट में लगा दिया है, क्योंकि भारत के मार्केट में तो रुपया लग सकता है, तो 7,000 रुपए लगा दिए। तो यहां तो 7,000 रुपए लगाए, लेकिन उसके पॉकेट से तो $100 गए हैं ना। अब वो कह रहा है कि नहीं यार, अब मैं जो है ना अपने रुपए वापस ले, अपने डॉलर वापस लेना चाहता हूं। तो अब उसे $100 वापस लेने के लिए कितने रुपए भारत को देने पड़ेंगे? 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। पहले कितने देने लिए थे उसने? 7,000 रुपए लिए थे। तो अब वो डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रुपया और ज्यादा गिर जाए, और ज्यादा गिर जाए, और नुकसान ना हो जाए, और नुकसान ना हो जाए। तो वो क्या करेगा? अपने इन्वेस्टमेंट को वापस बुलाना शुरू कर देगा। शेयर मार्केट में अगर है तो वो शेयर बेचना शुरू कर देगा कि भैया जल्दी से जल्दी निकालो, कहीं और रुपया गिर गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, और बल्कि सच पूछे तो होती भी है। स्पेशली इस पॉइंट्स की चर्चा मैंने प्री एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर की है, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले टूटता चला गया या कमजोर होता चला गया, तो भारत में विदेशी निवेश पर इसका क्या प्रभाव होगा, या शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव होगा, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव होगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, एक फार्मूला मैंने अभी आपके सामने रखा है, इसे आप अच्छे से अगर ना समझ पाए हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय है कि जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो आपको पहले करना क्या चाहिए। इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं कि सबसे पहली बात तो यह कि प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना चाहिए, उसे अब यहां दोहराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी जिस प्रश्न के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है कि वह सैटरडे को जो हम लोगों ने आपको क्वेश्चन दिया था उसके संदर्भ में है। आइए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो हम बात कर ही कैसे सकेंगे। कुछ राज्यों में जनसंख्या की कमी के कारण हिंदुओं को वहां का अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किए जाने संबंधी मांग के औचित्य का मूल्यांकन कीजिए, ये प्रश्न है, राइट? ध्यान से पढ़िएगा, जरा सा भी अगर आपने हड़बड़ी दिखाई तो मान करके चलिए कि गड़बड़ी होगी ही होगी। कुछ राज्यों में जनसंख्या की कमी के कारण, तो जो जनसंख्या की कमी का मतलब ये नहीं कि उस राज्य में जनसंख्या कम होती चली जा रही है, हिंदुओं की जनसंख्या की कमी के कारण वहां का अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किए जाने संबंधी मांग। अगर आप जरा भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होंगे और खासकर यहाँ जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो हम लोग आपको मंथली करंट अफेयर्स का कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें जो मेंस की दृष्टि से जिन टॉपिक्स का सिलेक्शन किया गया है उसके तहत इसकी चर्चा की गई है और टू दी पॉइंट और बहुत ही ठोस तरीके से चर्चा की गई है, याद करने की कोशिश कीजिए। और यदि आपने उन लेक्चर्स को सुन लिया होगा तो मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर सही है, ठोस उत्तर दे पाना, अच्छा उत्तर लिख पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो अब आपको करना होगा प्रश्न को समझने के बाद, इसके लिए अब आप पॉइंट्स निकालिए, तथ्य निकालिए कि किन किन पॉइंट्स को आप कवर करेंगे, ये होमवर्क आप कीजिए, आगे चल करके मैं इस पर बातें करूँगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं, इसके लिए एक नौजवान साथी ने एडमिशन लिया है, उनका नाम है अमितेश कुमार पटेल, आपका गांव है लच्छनपुर, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। तो अमितेश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, राहुल सैनी भरतपुर राजस्थान से, नैन्सी सासाराम बिहार से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से और सूर्य प्रकाश पटना बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।